ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। संविधान तथा राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। संविधान संशोधन के लिए सभी को सहमति में लेने के लिए अधिकतम प्रयास करेंगे, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन। संसदीय सुनवाई समिति द्वारा विभिन्न 16 देशों के लिए प्रस्तावित राजदूतों के नाम अनुमोदन। त्योहारों को लक्षित कर 42 जिलों के 63 स्थानों में सुपथ मूल्य की दुकानें संचालन में और फिलिस्तीनी हिस्से में इसराइल की अवैधानिक उपस्थिति एक साल के भीतर अंत्य करने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा से हुआ पारित। अब समाचार विस्तार से। संविधान एवं राष्ट्रीय दिवस आज विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर मनाया गया। इस अवसर पर आज काठमांडू में सैनिक मंच टूरी खेल में विशेष समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष, विभिन्न संवैधानिक निकायों के प्रमुखों, सांसदों, कूटनीतिक नियोगों के प्रतिनिधियों लगायत विभिन्न क्षेत्र के विशिष्ट व्यक्तियों की सहभागिता थी। दिवस के अवसर पर आयोजित विशेष समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि राजनीतिक स्तर पर कुछ हद तक देखी जा रही अस्थिरता को संवैधानिक संशोधन के माध्यम से संबोधित किया जा सकता है। संविधान दिवस के राष्ट्रीय दिवस के मौके पर आज काठमांडू के टूरी खेल में आयोजित विशेष समारोह में प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि वह संविधान में संशोधन के लिए सभी की सहमति लेने की पूरी कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री ओली ने नीति और राजनीति दोनों में स्थिरता की जरूरत बताते हुए कहा कि इससे ही देश का विकास होगा और लोगों की उम्मीदें पूरी होगी। उन्होंने कहा कि सरकार के पास संविधान को जीवंत बनाने के अलावा कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि नेपाल विभिन्न जातियों, भाषाओं, वर्गों और समुदायों के बीच मधुर संबंधों में बंधा हुआ है और सह अस्तित्व और आपसी सद्भाव और सहयोग ही राष्ट्रीय एकता का आधार है। प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार मानव अधिकार का मामला है और सरकार मानव अधिकारों का उल्लंघन नहीं करेगी। यह कहते हुए कि युवा पीढ़ी की ताकत से देश को बदला जा सकता है, प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि युवाओं के उत्साह और सतर्कता का उपयोग सभ्य समाज के निर्माण के लिए किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि सबसे दोस्ती नेपाल की विदेश नीति का सार है। प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि लोगों द्वारा लाए गए संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र को मजबूत करने के लिए उसके पक्ष में खड़ा होना हर किसी का कर्तव्य है। संविधान और राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर संघ, प्रदेश और स्थानीय सरकारों, राजनीतिक दलों, विभिन्न गैर सरकारी संस्थानों, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र और सामाजिक संघों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी प्रकार विदेशों में नेपाली राजनयिक नियोगों में भी संविधान और राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल ने राज्य राजकाज और राजनीति में नागरिक पहले स्थान पर होंगे, ये संकल्प लेने की सभी से अपील की है। संविधान दिवस 2081 के अवसर पर आज राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में आयोजित विशेष समारोह में राष्ट्रपति पौड़ेल ने कहा कि नागरिकों के हितों के अलावा राज्य का कोई हित नहीं है। राष्ट्रपति पौड़ेल ने यह भी कहा कि चूंकि लक्ष्य तुरंत हासिल नहीं होगा, इसलिए हमें इसके लिए संकल्प लेना होगा और बिना परेशान हुए आगे बढ़ना होगा। कठिन परिस्थितियों में भी लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखने की बात कहते हुए राष्ट्रपति पौड़ेल ने कहा कि वर्तमान उपलब्धियां तभी सार्थक होगी जब वे सुशासन एवं जन आकांक्षाओं के अनुरूप आगे बढ़ सके। इस अवसर पर राष्ट्रपति पौड़ेल ने समावेशी और सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध होने और विभिन्न जाति, भाषाओं, धर्मों, संस्कृतियों और सभ्यताओं को साझा करने का संकल्प लेने का भी आग्रह किया। राष्ट्रपति पौड़ेल ने कहा कि विकास और सेवा वितरण में तेजी लाने के लिए इस महत्वपूर्ण समय में सभी के लिए संविधान के पूर्ण कार्यान्वयन पर ध्यान देना आवश्यक है। नेपालियों को अपना संविधान लिखने का जो सौभाग्य और अवसर मिला है, उस संदर्भ का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति पौड़ेल ने कहा कि वे इस गौरवशाली विश्व इतिहास को बनाने में सफल रहे हैं। विशेष समारोह में नेपाली सेना ने विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुति समेत प्रदर्शन किया था। संविधान दिवस के मौके पर आज काठमांडू के दरबार मार्ग में संगीतमय कार्यक्रम नेशनल डे कंसल्ट का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय दिवस समारोह में सर्वसाधारण अपने हाथों में नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज लेकर उत्सव मना रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों ने अपनी संगीतमय प्रस्तुतियां दी है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली कंसर्ट देखने और वहां मौजूद भीड़ का उत्साह बढ़ाने के लिए कार्यक्रम स्थल पर मौजूद थे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ओली ने सभी को संविधान दिवस एवं राष्ट्रीय दिवस 2081 की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार संविधान के सफल क्रियान्वयन के साथ लोगों की उम्मीदों के अनुरूप आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ओली ने सभी के समर्थन और सहयोग से नेपाल को समृद्ध बनाने के लिए काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया। वहीं समारोह में उप प्रधान एवं अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौड़ेल समेत अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे। 2072 आश्विन 3 गते को संविधान सभा द्वारा संविधान जारी किए जाने के दिन की स्मृति में हर वर्ष आश्विन 3 गते को संविधान दिवस तथा राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। संगीत कार्यक्रम के दौरान दरबार मार्ग इलाके में यातायात रोक दिया गया है और काठमांडू घाटी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने कहा कि संविधान क्रियान्वयन के 9 सालों तक देखा जाए तो निराशा होने की अवस्था नहीं है। विश्व के अन्य देशों में नए संविधान बनने के बाद अभ्यास के साथ तुलना की जाए तो सापेक्षता में नेपाल हमारे संविधान का क्रियान्वयन तेजी से हो रहा है, ये बात मंत्री गुरुंग ने कहे। परराष्ट्र मंत्री डॉ आरजू राणा देउबा ने कहा कि नेपाल का वर्तमान संविधान नेपाली जनता ने अपने जनप्रतिनिधियों के द्वारा संविधान लिखने की प्रतिज्ञा के साथ किए बहुत लंबे संघर्ष और बलिदान का दस्तावेज है। कनाडा के ओटावा स्थित नेपाली राजदूतावास द्वारा आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था मार्फत संविधान तैयार करने के लिए नेपाली जनता ने बहुत संघर्ष किया है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। उचाइ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् बाबुजू।
ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हे, त पनि एनटीसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसी को डे प्याक लिन *14# ह्यास डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। नेपाली कांग्रेस के महामंत्री विश्व प्रकाश शर्मा ने कहा कि समय पर संशोधन से ही संविधान को लंबी उम्र मिलेगी। आज कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय शानेपा में आयोजित कार्यक्रम में महामंत्री शर्मा ने संविधान को समय पर सफलतापूर्वक लागू करने के मुद्दे पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि संविधान की सफलता के लिए संविधान में संशोधन अनुकूल प्रवृत्ति का विकास और व्यवस्था परिवर्तन महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि संविधान संशोधन के विषय में सभी दलों के बीच हुई सहमति के बूंदों का पहचान करने की जरूरत है। संसदीय सुनवाई समिति ने विभिन्न 16 देशों के लिए प्रस्तावित राजदूतों के नाम अनुमोदित किए हैं। समिति की आज की बैठक ने बहुमत के आधार पर प्रस्तावित राजदूतों के नाम अनुमोदित किए। समिति के सदस्य महेश बर्तौला ने बताया कि जरूरी कागजात पूरे न होने के कारण श्रीलंका के लिए प्रस्तावित राजदूत रामकृष्ण भट्टराई का नाम अनुमोदित नहीं हो सका। आवश्यक कागजात पेश करने के बाद ही उनका नाम अनुमोदित होगा। उन्होंने बताया कि समिति सदस्य डोल प्रसाद अर्याल और प्रकाश अधिकारी ने दक्षिण अफ्रीका के लिए प्रस्तावित राजदूत कपिल मान श्रेष्ठ, इसराइल के लिए प्रस्तावित राजदूत धन प्रसाद पंडित, मलेशिया के लिए प्रस्तावित राजदूत नेत्र प्रसाद तिमल सिन्हा और भारत के लिए प्रस्तावित राजदूत डॉ शंकर शर्मा के नाम अनुमोदन में विमति जताई थी। आज से सर्वसाधारण के लिए धरहरा को खुला करने के बाद धरहरा पर चढ़ने वालों की भीड़ लगी रही। संविधान दिवस के अवसर पर आज निशुल्क रूप में धरहरा को खुला किया गया है। बता दें कि पिछले हफ्ते मंत्रिपरिषद की बैठक ने संविधान दिवस के अवसर पर आज से धरहरा को अस्थायी रूप में संचालन में लाने का निर्णय किया गया था। आज दांग में मोटरसाइकिल दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई। हादसे में मरने वालों में घोराही उपमहानगर पालिका वार्ड नंबर 18 के 22 वर्षीय चालक श्रवण कुमार पुन और घोराही वार्ड नंबर 4 के 21 वर्षीय विनोद केसी शामिल है। ये जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय के एसपी राम बहादुर केसी ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। फिलिस्तीनी हिस्से में इजराइल की अवैधानिक उपस्थिति एक साल के भीतर अंत करने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा से पारित हुआ है। इस 193 सदस्यीय महासभा ने वोटिंग के बाद इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। प्रस्ताव के पक्ष में 124 देशों ने वोटिंग की, इसमें 14 ने विरोध में मतदान किया और भारत समेत 43 देशों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। मतदान में हिस्सा न लेने वालों में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, इटली, नेपाल और यूक्रेन और यूनाइटेड किंगडम जैसे देश शामिल थे, जबकि यूके ने दो राज्य समाधान का समर्थन करने के बावजूद मतदान में हिस्सा नहीं लिया। जापान ने इसके पक्ष में यह कहते हुए मतदान किया कि टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और उसके काम को बहुत महत्व देता है। जापान ने कहा कि इसराइल की बस्तियों की गतिविधियों को दो राज्य समाधान की प्रगति को कमजोर करती है। इसराइल और अमेरिका उन देशों में शामिल थे जिन्होंने इस प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया था। बता दें कि बुधवार को पारित प्रस्ताव में मांग की गई इसराइल बिना किसी देरी के कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में अपनी गैरकानूनी उपस्थिति को समाप्त करे, जो कि एक निरंतर चरित्र का गलत कार्य है जो इसकी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी को दर्शाता है। इस प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि इसराइल 12 महीने से पहले उन इलाकों को खाली कर दे। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संविधान तथा राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। संविधान संशोधन के लिए सभी को सहमति में लेने के लिए अधिकतम प्रयास करेंगे, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन। संसदीय सुनवाई समिति द्वारा विभिन्न 16 देशों के लिए प्रस्तावित राजदूतों के नाम अनुमोदन। त्योहारों को लक्षित कर 42 जिलों के 63 स्थानों में सुपथ्य मूल्य की दुकानें संचालन में और फिलिस्तीनी हिस्से में इसराइल की अवैधानिक उपस्थिति एक साल के भीतर करने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा से हुआ पारित। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।